एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना वायरस बर आज़म अंटार्कटिका में दाखिल नहीं हो पाया। जनूबी निसफ कुर्रे में वाक़ इस बर आज़म पर ज़िंदगी तो मौजूद है, मगर वहाँ रहता कोई नहीं सिवाय चंद हज़ार साइंसदानों और मुहक्किकीन के, जो वहाँ मुख्तलिफ तजरिबात कर रहे हैं। दुनिया के बाकी हिस्सों में कोरोना वायरस ने तबाही मचा रखी है। अंटार्कटिका महफूज है, तो क्या इसके दर्जे हरारत का इसमें दखल है? माहिर माहौलियात और डेलावेयर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर सलीम अली कहते हैं कि अभी ये वाजे नहीं है कि वायरस पर दर्जा हरारत का क्या असर होता है। वो कहते हैं,
अक्सर आपको पता है जब वैक्सीन या वायरसेस को स्टोर किया जाता है तो उनको रेफ्रिजरेटर्स में रखा जाता है, तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आपका टेम्परेचर बहुत कम होगा तो वायरस जो है वो एक्टिव नहीं हो सकेगी बाद में। कई दफा ये भी हुआ है कि वायरसेस इनएक्टिव हो जाती हैं, और कुछ रिसर्च ये शो करती है कि जो बर्फानी इलाकों में इस वक्त बहुत कदीम दौर की वायरसेस हैं वो अभी भी फ्रोजन है, और जैसे कि क्लाइमेट चेंज के साथ ये बर्फ पिघलेगी वो वायरसेस फिर एक्टिवेट हो सकती हैं। ये अभी कुछ दो साल पहले एक पेपर इस पे पब्लिश भी हुआ था कि अंटार्कटिका और जो पोलर रीजन्स में बर्फ के पिघलने का अंदेशा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, उससे ये जो वायरसेस बहुत ही कदीम जमाने की डायनासोर्स के जमाने की भी शायद हों वो एक्टिवेट हो सकती हैं बाद में।
तो ये तो बड़ी तश्वीश की बात है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज को अमेरिका जैसा बड़ा मुल्क अगर नज़रअंदाज करता है, जैसे कि मौजूदा हुकूमत का मौक़िफ़ है, तो फिर तो बहुत जल्द ये वक्त आ जाएगा कि इंसान बेपरवाह हो जाएगा और फिर ख़तरा उसके लिए बढ़ जाएगा।
जी, इसीलिए ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे रिसर्च कॉन्स्टेंटली करनी पड़ेगी हमें, कि ये एक ऐसी चीज़ नहीं कि आप कहें जी कि अब हमें सारी वायरसेस का पता है, अगर सारा जीनोम भी ये इनका जो डिफरेंट आजकल के जो जानवर हैं उनके अगर हम वायरसेस हैं और उनके हम जेनेटिक कोड कर सकते हैं पता ताकि वैक्सीन बना सकें, हमें ये नहीं पता कि कौन सी ये बहुत सारी जो कदीम जमाने की वायरसेस हैं जो पोलर आइस कैप्स में हैं वो अगर रिलीज हुई उनका क्या असर होगा। तो ये कॉन्स्टेंट रिसर्च की जरूरत है। जहां तक अंटार्कटिका का सवाल है, इस वक्त वहां पे कोई कोरोना का केस नहीं है, वो इस वजह से है जाहिर है कि वहां पे इस वक्त ट्रैवल इतना कम है कि वायरस का वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। मगर ये जरूर है कि कुछ क्रूज शिप्स वहां अंटार्कटिका जाती हैं, जो लोग तफरी के लिए जाते हैं क्रूजेस पे, तो वो उन्हें खतरा था कि हो सकता है कि कुछ वो जो लोग गए हैं तफरी के लिए वहां से वायरसेस कोरोना वायरस भी शायद कोई वहां के बेस में फैले, मगर शुक्र है कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ। और क्योंकि अब अंटार्कटिका में सर्दी का मौसम शुरू होने वाला, विंटर शुरू होने वाली, सर्दी तो वहां हर वक्त ही होती है मगर अब विंटर में तो और भी ज्यादा ट्रैवल कम हो जाता है। तो बहुत ही कम साइंटिस्ट हैं जो वहां पे हैं इस वक्त। जो एंटार्क्टिक ट्रीटी है एक आलमी निज़ाम है जिसके तहत एंटार्क्टिका को मैनेज किया जाता है, उसके हवाले से ये है कि वहाँ रिसर्च बेसिस हैं, कोई 20-21 ममालिक हैं जिनकी वहाँ पे किसी किस्म की मुख्तलिफ रिसर्च कर रहे हैं, वो कई क्लाइमेट चेंज पे रिसर्च कर रहे हैं, तो वो जो बेसिस हैं विंटर में उधर बहुत ही कम लोग होते हैं। अमेरिका की एक बहुत बड़ी बेस है जो साउथ पोल पे है, और एक और है जो जिसे मैकमर्डो साउंड कहते हैं, वो दो बड़ी बेसेस हैं, वहां पे सारा साल लोग होते हैं। मगर उसके अलावा जो ज्यादातर बेसेस हैं वहां पे ज्यादा लोग नहीं होंगे। रशिया की एक बेस है वोस्टॉक, और चाइना की भी एक नई बेस है जो काफी बड़ी है, मगर उसके अलावा जो छोटे ममालिक की बेसेस हैं वहां पे ज्यादा लोग नहीं होंगे इस वक्त सर्दियों में।
ठीक, तो इसका मतलब है कि वहाँ तहकीक तो हो रही है। तो डॉक्टर साहब, इस तहकीक का कोई मस्बत नतीजा सामने आया है? मतलब मुख्तलिफ चीज़ों पर लोग मुख्तलिफ तहकीक कर रहे होंगे, लेकिन ज़्यादातर ये देख रहे होंगे कि कुतबैन पे जो मौसम है वो दुनिया की बाकी हिस्सों में जिस तरह से इंसान अपने मामूलात रख रहा है उसका क्या असर वहाँ पड़ रहा है। तो कोई आपके ख्याल में कोई हौसला अफजा बात वहाँ से आई है?
हाँ जी, वहाँ पे बहुत किस्म की तहकीक हो रही है। एक तो ये जो मैंने बताया कि आइस कोर्स जो हैं, जिस तरह आप क्योंकि एंटार्क्टिका में इतनी कदीम बर्फ है, इतने पुराने जमाने की जो पिघली नहीं है क्योंकि वो वहाँ के माहौल की वजह से, तो एक तो रिसर्च वो आइस कोर्स पे होती है कि वो ड्रिल करते हैं आइस शीट के अंदर और उसमें से वो जो बर्फ के अंदर छोटे बुलबुले हैं जमे हुए उस जमाने की आबो हवा के, उसको वो एनालाइज करते हैं आइस कोर्स को। एक वो रिसर्च है और एक ज्यादा जो और रिसर्च अब हो रही है वो है ओजोन लेयर के बारे में, क्योंकि एंटार्क्टिका के ऊपर जो ओजोन की एक हमारे एटमॉस्फेयर में है मकदार, ओजोन एक गैस है जिसकी वजह से हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्टेड रहते हैं, तो क्योंकि एंटार्क्टिका के एरिया में वो ओजोन पे काफी मनफी असर हुआ था कुछ केमिकल्स का जो हम प्रोड्यूस करते थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिन्हें कहते हैं, उस पे बहुत रिसर्च हो रही है कि वो उनकी प्रोडक्शन जो बंद की गई थी 1980s में एक आलमी निज़ाम के तहत जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं, तो वो उसका क्या असर हो रहा है कि क्या वो ओजोन लेयर जो है वो फिर वापस आ रही है जिसकी वजह से हम ये जो सूरज की शुआएं हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो सन से आती है उससे हम बच सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह से स्किन कैंसर रेट्स बहुत बढ़ गए थे सदर्न हेमिस्फीयर में। अभी भी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जो करीब है एंटार्क्टिका के, वहाँ पे स्किन कैंसर रेट्स बहुत हाई हैं और वो इसी वजह से रहे हैं क्योंकि ये एंटार्क्टिका के ऊपर जो ओजोन लेयर थी वो डिप्लीट हो गई थी, तो उस पर भी बहुत रिसर्च होती है एंटार्क्टिका में जो आबो हवा पे असर हुआ है, हायर एटमोसफेयर पे भी। सो बहुत सारी चीजें हैं वहाँ का, क्योंकि वो इतना यूनिक जगह है, उस तरह की कोई और जगह नहीं दुनिया में जहाँ इतना बड़ा बर्फानी कॉन्टिनेंट हो। इट्स उसको मैं बड़ी अजीब अजीब उसमें कई बातें एंटार्क्टिका की, वो कहते हैं कि इट्स द वर्ल्ड्स ड्राइस्ट कॉन्टिनेंट एंड द वर्ल्ड्स वेटेस्ट कॉन्टिनेंट। उसका मतलब ये है कि वहाँ पे वैसे बर्फ और पानी जो है जमा हुआ है, क्योंकि वो इतना ज्यादा जमा हुआ पानी है, इट्स द वेटेस्ट कॉन्टिनेंट, मगर वहाँ पे वैसे अगर देखा जाए तो बारिश बहुत कम होती है, तो वो वेटेस्ट भी है ड्राइस्ट भी है, इट्स अ वेरी यूनिक प्लेस।
डॉक्टर साहब बहुत सी बातें पता चली हैं, ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डेलावेयर यूनिवर्सिटी में माहौलियात और एनर्जी के प्रोफेसर डॉक्टर सलीम अली की गुफ्तगू आपने सुनी। मुदस्सिरा मंजर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।